नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियन बीच गेम्स में जीता स्वर्ण पदक। पुरुष टीम ने भी फाइनल में जगह बनाई। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले में बेंगलुरु की स्थिति मजबूत। पांचवें महिला टी20 क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 156 रन का लक्ष्य दिया। और जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत ने 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 16 पदक के साथ प्रतियोगिता का समापन किया। चर्चा की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारतीय पुरुष टीम ने थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से हराया। ग्रुप का अंतिम मैच भारत और चीन के बीच बुधवार को होगा। भारत और चीन इस ग्रुप में शीर्ष पर हैं। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
पेरिस ओलंपियन और राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन लक्ष्य सेन ने एफ्रेम स्टीफन सैम पर 21-14, 21-16 से जीत हासिल करके भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई। यूएस ओपन चैंपियन और हाल में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में उप विजेता रहे आयुष शेट्टी ने श्रेय ढांड को 21-8, 21-6 से आसानी से हराकर भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारत की शीर्ष डबल्स जोड़ी ने रिजकी हिदायत और जैक यू को 21-14, 21-16 से हराकर स्कोर 3-0 कर दिया। इससे भारत की क्वार्टर फाइनल में जगह सुनिश्चित हो गई है। विश्व चैंपियनशिप 2023 और एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता एचएस प्रणॉय ने आधे घंटे से भी कम समय में ऋषि होंडा भूपति पर 21-11, 21-17 से जीत हासिल की। हरिहरन अमसाकुरनन और एमआर अर्जुन ने डबल्स मुकाबले में एंडिका रामाडी यांस्या और एफ्रेम स्टीफन सैम को 21-12, 21-10 से हराकर क्लीन स्वीप किया। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
बेहतरीन प्रदर्शन किया है, चाहे हम लक्ष्य सेन की बात कर ले, शेट्टी की बात कर ले, या फिर डबल्स के जो जोड़ी है हमारी सात्विक चिराग की, उन्होंने अच्छा खेल दिखाया आज भी।
बिल्कुल। और देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आयुष शेट्टी ने, जिन्होंने अभी अभी अपनी धाक जमाई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उसपे मैंने पहले भी कहा था इसी कार्यक्रम में कि पूत के पांव पालने से ही दिखने लगते हैं, और आयुष शेट्टी बहुत प्रॉमिस शो कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने आज प्रदर्शन किया है, ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से हराया, इसके पहले कनाडा को 4-1 से हराया भारतीय टीम ने, तो जो उनकी शुरुआत ही हुई अभियान की जीत के साथ, दमदार जीत के साथ हुई। और जो अनुभवी खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, 2026 के ऑल इंग्लैंड फाइनलिस्ट, उसके बाद फिर रांकी रेड्डी और शेट्टी की जोड़ी तो है ही, बट आयुष शेट्टी ने और भी इस जीत का मजा दुगना कर दिया, क्योंकि अब भारत ये कह सकता है कि लक्ष्य सेन के बाद भी एक कतार है खिलाड़ियों की जिनसे अच्छे उम्मीद की जा सकती है। और जो इतिहास भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर 2022 में थॉमस कप पहली बार जीत कर रचा था, मुझे लगता है कि इस बार डेनमार्क में भारत की टीम जब चाइना से भिड़ेगी, चीन से भिड़ेगी, तो उस समय देखना होगा कि किस प्रकार से अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखते हैं, अपने स्नायु तंत्र को नियंत्रण में रखते हैं भारतीय खिलाड़ी। और बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्रुप ए में चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की टीम थी, और अब चीन के साथ मुकाबला होना है। और चीन की टीम को अभेद्य दीवार बैडमिंटन में कहा जाता था, अब वो दीवार अभेद्य नहीं रही, ये तो कितनी बार साबित कर दिया भारतीय खिलाड़ियों ने। तो देखना होगा कि किस प्रकार से अब चीन का मुकाबला करती है भारतीय टीम।
जी, जैसे आपने चीन का जिक्र भी किया, ओवर कप में भी आज भारत का मुकाबला चीन से होना है, और भारत ने ओवर कप में पहले तो यूक्रेन को हराया 4-1 से, और डेनमार्क से 2-3 से उन्हें हार मिली थी। तो जो यूक्रेन से जो उन्हें जीत मिली, उससे हौसले तो बुलंद होंगे, लेकिन आज मुकाबला सुदृढ़ टीम चीन से होना है भारत का।
बिल्कुल, और एक बार फिर मैं कहूंगा कि जो यूक्रेन से मुकाबला हुआ, उससे पहले जो डेनमार्क से मुकाबला हुआ, यूक्रेन का खासकर, उसमें उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग, ये जो तीन बिल्कुल जिसको कहते हैं कि उदयमान सितारे हैं भारतीय टीम के, इनसे जिस प्रकार के प्रदर्शन की उम्मीद लगाई थी भारत ने, उससे ही उसी तरह से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। और जो ये निर्णायक फाइनल ग्रुप टाई होगा चाइना के साथ, और आज ही होना है, अब थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि भारत के लिए एक बार फिर वही कड़ी चुनौती तो जरूर होगी। मगर जो 10 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड पर अगर आप नजर डालें, तो इसमें जो जिसको कहते हैं कि बिल्कुल सीजनड वेटरन्स, पुराने खिलाड़ी मजे हुए बिल्कुल, और उनके साथ उदयमान सितारे, तो इस तरह का जब होता है अनुभव और युवा जोश का एक साथ होता है, तो उसमें टीम बहुत अच्छा करती है। तो मुझे उम्मीद है कि उन्नति, तन्वी, देविका और ईशा रानी बरुआ, पीवी सिंधु, ये सब मिलकर बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करेंगी। और डबल्स में भी तनिषा क्रास्टो हैं, श्रुति मिश्रा हैं, प्रिया कोंजेंग बैम हैं, कवि प्रिय सेल्वम हैं, सिमरन सिंघी हैं, ये सारे नए नाम आप सुन रहे हैं, बहुत सारे इनमें नए नाम सुन रहे हैं, और यही उम्मीद दिलाता है भारतीय टीम से, भारतवासियों को, कि बैडमिंटन में एक अभी लंबी कतार खिलाड़ियों की है जिनसे पदकों की झड़ी लगाई जा सकती है।
बात कर लेते एशियन बीच गेम्स पर। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियन बीच गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में आज भारत ने श्रीलंका को हराया। वहीं पुरुष टीम ने भी फाइनल में जगह बना ली है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एशियन बीच गेम्स चैंपियनशिप में श्रीलंका को 47-31 से हराया। भारत ने एशियन बीच गेम्स में इस संस्करण में पहला स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले भारतीय महिलाओं ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 50-31 से हराकर पहला मेडल पक्का किया था। इस बीच पुरुषों की टीम ने भी पाकिस्तान पर 50-27 से शानदार जीत हासिल करके फाइनल में जगह बनाई और भारत का दूसरा पदक पक्का किया। वियतनाम में 2016 में हुए एशियन बीच गेम्स में भारत ने 24 पदक जीते थे, जिनमें 2 स्वर्ण, 4 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल थे। महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण जबकि पुरुष टीम ने रजत पदक जीता था। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स के।
कर लेते टेबल टेनिस पर। लंदन में भारत की पुरुष और महिला टीम ने कल से शुरू हो रही विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगी। मानव ठक्कर, जी साथियान, मानुष शाह, हरमीत देसाई और पायस जैन की मौजूदगी वाली भारतीय पुरुष टीम स्लोवाकिया, ट्यूनेशिया और ग्वाटेमाला के खिलाफ प्रबल दावेदार के तौर पर शुरुआत करेंगी। मनिका बत्रा की अगुवाई वाली भारतीय टीम में यशस्विनी घोरपड़े, दिया चितले, सुतीर्था मुखर्जी और सिंड्रेला दास शामिल हैं। बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका और भारत के बीच हुए मुकाबले में। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में 23 रन से हरा दिया है। काफी निराशाजनक रही ये सीरीज, 4-1 से भारत हार गई है। विश्व कप भी सामने होने को है अब तो।
बिल्कुल, और जिस प्रकार से आज भारत का खेल हुआ, हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें 155 रन पर बांध दिया था, 6 विकेट उनके गिरे थे दक्षिण अफ्रीका के, और भारत के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, क्योंकि अगर 155 रन 20 ओवर में बनते हैं तो बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन भारतीय महिला टीम उसको डिफेंड नहीं कर पाई, 8 विकेट गंवा दिए 132 रन के स्कोर पर। और अगर आप देख लें, भारतीय फुलमली एकमात्र ऐसी खिलाड़ी थी जिन्होंने 30 गेंदों में 40 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाए, और फिर ऋचा घोष ने 25 का योगदान दिया और हरमनप्रीत कौर ने 22 का, तो कुल मिलाकर बाकी सभी कोई 1, कोई 4, कोई 13, कोई 17, इस तरह से भारतीय बल्लेबाज एक के बाद एक इंडियन बैटर्स आउट होते चले गए। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, श्रृंखला बहुत निराशाजनक रही। भारत को बैठकर सोचना होगा कि कहां, देखिए प्रतिभाओं की कमी नहीं है यहाँ पे
जी।
जेमी मार रॉड्रिक्स को लीजिए, अनुष्का शर्मा को लीजिए, शेफाली वर्मा को लीजिए, हरमनप्रीत कौर को लीजिए, दीप्ति शर्मा को लीजिए, सभी अच्छी लड़कियां हैं और जिन्होंने करके दिखाया है विश्व स्तर पर कि बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन। तो कहीं ना कहीं या तो थोड़ा अभ्यास की कमी है या एक कॉम्प्लेसेंसी, एक ढीलापन देखने को मिला। जिस प्रकार से खेलती हैं, अगर ये अच्छे ढंग से खेलती तो दक्षिण अफ्रीका की टीम बहुत मजबूत ऐसी टीम नहीं थी जिसको हराया नहीं जा सकता था।
ये बात कर लेते हैं। अब आईपीएल क्रिकेट में भी, आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 11 ओवर में 7 विकेट पर 58 रन बना लिए हैं। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंक तालिका में बेंगलुरु दूसरे और दिल्ली 7वें स्थान पर है। बेहतरीन प्रदर्शन किया है आज भी, और एक समय तो ऐसा था जब दिल्ली के 8 रन पे 6 विकेट गिर गए थे, और
6 रन पर 8 विकेट गिर गए,
6 रन पे
8 रन पे 6
विकेट गिर गए थे। हाँ, और भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड ने क्या टेस्ट
कहर बरपाया, ऐसा कि लगी नहीं रहा था। देखिए, मैं एक बात सोच रहा था
जी,
कि राहुल जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते थे और जब उन्होंने इस टीम को छोड़ा, उसके बाद सबसे ज्यादा रन उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ ही बनाए हैं, और पूरे बैंगलोर की टीम इस दाव पेच में लगी थी कि किस प्रकार से इन पर कब्जा किया जाए, आज कैसे इनको रोका जाए, कैसे इनको, और देखिए सिर्फ एक रन बनाकर 3 गेंद ही खेल पाए, और उसके बाद एक रन पर उनको हेजलवुड ने शामियाना दिखा दिया,
जबकि पिछले मैच में 150 रन
इतिहास रचा। और साहिल तो बिना रन बनाए चले गए। नीतीश राणा ने 9 गेंदे खेली और एक रन उनके बल्ले से निकला। समीर रिजवी भी बिना रन बनाए गए। ट्रिस्टन स्टॉप्स से उम्मीद थी कि वो आए हैं तो कुछ टिकेंगे, 3 गेंदे खेली, 5 रन बने। और अक्षर पटेल फिर से शून्य पर आउट हुए, और पोरेल अभी खेल रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि कुछ देर तक। बट डेविड मिलर ने थोड़ा निराश किया, क्योंकि एक समय आया था जब लग रहा था कि 49 रनों का जो स्कोर है सबसे कम अब तक का आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बनाया था, उससे भी कम पर ये टीम आउट हो जाएगी। मगर मिलर ने जिस तरह के खेल का प्रदर्शन किया, पोरेल के साथ मिलकर जब बल्लेबाजी शुरू की, तो मैं तो समझ रहा था कि शायद 100 का आंकड़ा पार करने में इन्हें दिक्कत नहीं होगी, बट मिलर आउट हो गए। और उसके बाद फिर पोरेल अभी खेल रहे हैं और जैमिसन नॉट आउट हैं, और मगर जिस प्रकार से, जिस तरह से खेलना चाहिए था, बड़ी निराशाजनक खेल का प्रदर्शन रहा है। 7 विकेट गंवा चुकी है, 59 रन का स्कोर है
मुकाबले।
अब 12वां ओवर चल रहा है और अभी तक 7 विकेट जा चुके हैं, तो ये तो तय बात है, अगर कोई अचंबा हो जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि 20 ओवर ये टीम शायद नहीं खेल पाएगी
जी। वहीं कल हुए रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने लखनऊ को सुपर ओवर में हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने निर्धारित ओवर में 155 रन बनाए, जवाब में लखनऊ की टीम भी 155 रन ही बना सकी और मुकाबले का फैसला सुपर ओवर से किया गया। सुपर ओवर में सुनील नारायण ने लखनऊ को 1 रन पर ही समेट दिया और कोलकाता ने मुकाबले को आसानी से जीत लिया। रिंकू सिंह को नाबाद 83 रन और 5 कैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बेहतरीन बल्लेबाजी की है रिंकू ने, पिछला मुकाबला भी उन्होंने अपने दम पर कोलकाता को जिताया था और वापसी कराई, और कल के मुकाबले में भी अंतिम ओवर में 4 छक्के लगाकर वापसी कराया था उन्होंने,
और जो कैच पकड़े
जी,
मैच का रुख ही बदल दिया। मतलब जो अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा
जी,
रिंकू सिंह ने 6ठे नंबर पर अगर कोई बल्लेबाजी करने आए 20 ओवर के मैच में
जी,
और इस तेज गति से रन बनाए, ये बहुत कम देखने को मिलता है, और इनको ने वो दिखाया। तो कल का दिन भी एक ऐसा दिन कहा जा सकता है जिसमें कुछ ना कुछ घटता रहा, ऐसा जो अभी तक क्रिकेट विशेषज्ञों के दिमाग में भी नहीं है। जैसे कि पूरन
जी
को उन्होंने कहा कि अब आप जाइए और वहां पे सुपर ओवर के बाद उसमें आप अपने खेल का प्रदर्शन कीजिए, निराश हुआ
जी।
पूरी बैंगलोर टीम,
लखनऊ
की टीम के जो प्रशंसक थे वो निराश हो गए।
बात कर लेते निशानेबाजी पर। मिस्र के काहिरा में हुए ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत ने 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। बेहतरीन प्रदर्शन किया पूरे टूर्नामेंट में भारत ने,
बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। देखिए 16 पदक, 5 स्वर्ण, 6 रजत, 5 ब्रॉन्ज, और उसके बाद दूसरे नंबर की टीम कजाकिस्तान के सिर्फ 1 स्वर्ण पदक, तीसरे पे उज्बेकिस्तान, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य, और फिर उसके बाद फ्रांस 1 स्वर्ण और 2 कांस्य, हंगरी सिर्फ 1 स्वर्ण। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ओवरऑल जो स्टैंडिंग है भारतीय टीम की, जिस तरह से डोमिनेट किया है बिल्कुल एकदम प्रभुत्वशाली ढंग से, तो काफी अच्छा ये प्रदर्शन कहा जाएगा भारतीय शूटर्स का।
और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मलय जी आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद।
और श्रोताओं इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।